ओम शांति। तो आज का टॉपिक है जस्ट लाइक दैट, हिंदी में उसका अर्थ ऐसे ही, जो बाबा ने संडे के मुरली में कहा था, ऐसे ही की चालू भाषा, जो ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो वास्तव में अगर हम अपने जीवन में जो बीते हुए जीवन का निरीक्षण करें तो बहुत सारा लगता है ऐसा, बहुत सारा समय जो है वो ऐसे ही चला गया। और वो ऐसे ही क्यों गया, उसके बहुत सारे रीजन है, कारण है। ऐसे ही का जंजाल जो है, जो हमारे पुरुषार्थ में रुकावट डालता है, उस ऐसे ही कि चालू भाषा से मुक्त होने के लिए बहुत सजग रहने की जरूरत है। अगर कहीं ना कहीं हम बिना अर्थ की बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है, तो हम पुरानी दुनिया या पुराने संस्कारों के वश, कर्मेंद्रियों के अधीन, कर्मेंद्रियों का भोग भोगने में लगे हुए हैं। तो दिन प्रतिदिन जैसे हम ब्राह्मण पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही के रायल रूप, सूक्ष्म रूप से बहुत प्रकार से हमारे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, जहां ना चाहते भी हमारी कर्मेंद्रियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। चाहे वो दृष्टि है, चाहे बोल हैं, संकल्प हैं, या कर्म है। अगर हम गहराई से निरीक्षण करें तो बहुत सारा जो अमूल्य समय है वो हमारा उसमें व्यतीत हो जाता है। जैसे एक बार एक भगत होता है, तो वो भगत मंदिर में जाता है, मंदिर में जाते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते जाता है मंदिर में, और हाथ में पानी का, वो दूध के जल का वो लोटा होता है, दूध और जल का, शिवलिंग चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, अर्पित करने के लिए जाता है, और रास्ते में एक दूसरा व्यक्ति उसको मिलता है, मिलता नहीं माना उससे टकरा जाता है अचानक, और उसका जो हाथ में उसने जो लोटा लिया होता है वो गिर जाता है। फिर अचानक उसके मुख से, उसके प्रति मुख से भी गाली निकल जाती है, हल्के से उसके बोले आवाज नहीं आती लेकिन मन से जैसे निकल जाती है, और बहुत अच्छा वक्त होता है। फिर सामने वाला सॉरी भी कहता है, लेकिन इसके मुख से जो अंदर से मन से जो संकल्प उठ गया, तो उसको बाद में बहुत अंदर में जैसे खाता रहता है, कचोटता रहता है कि मैंने इसको क्यों कह दिया ये। तो फिर वो एक उस जो मुख से गाली निकली है उसके पश्चाताप में अंदर ही अंदर उसको बहुत जैसी घुटन सी महसूस होती है, अब उससे मुक्ति कैसे पाई जाए। तो फिर वो गुरु के पास जाता है और गुरु को अपनी जो घटना बीती, आप बीती घटना उसको सुनाता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो वो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, इससे भी मुक्त हो सकते हैं आप। तो कहता गुरु जी फिर कोई उपाय बताइए। तो गुरु जी कहते हैं पास वाले कमरे में एक गठड़ी रखी है, उसमें बहुत सारे पंख हैं। तो वो पंखों की गठड़ी लेकर आता है और वो गुरुजी कहते हैं कि इन पंखों को पूरे शहर में फैला दो, इधर उधर फेंक के आ जाओ। तो वो गुरुजी की आज्ञा अनुसार वो भगत जाता है और वो सारे पंख जो वो शहर में फैला के आ जाता है। फिर वापस में गुरु कहता है, गुरुजी के पास पहुंचता है वापस, तो गुरुजी को कहता है मैंने कर दिया जैसे आपने कहा था। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अभी आप फिर वापस जाओ और जो पंख फैलाए हैं उनको वापस लेके आओ। तो जाता है वापस, अब पंख मिलेंगे कहां, वो तो सारे फैल चुके हुए हैं। तो वापस आता है गुरुजी के पास, वो तो कहता है गुरुजी ये तो पंख सारे फैल चुके हुए हैं, अब इसको एकत्रित नहीं किया जा सकता। तो गुरुजी कहते हैं कि जो एक बार मुख से मन से संकल्प निकल गया या मुख से बोल निकल गया उसका कुछ हो नहीं सकता है, वो तो वाइब्रेशन हवा में फैल चुके हुए, उसका एक ही कारण है भूल जाओ बस, दूसरा को मार्ग ही नहीं है। जो भी बात बीत गई उसको भूल जाओ, उसके लिए ध्यान ज्ञान अच्छी तरह से करो, आगे से वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो ठीक इसी तरह बाबा भी हम सबको ब्राह्मण जीवन का महत्व बताते हैं कि समय कौन सा चल रहा है, संगम युग का छोटा सा समय है, इस समय में सारे कल्प की कमाई जमा का खाता करने का समय अभी अमूल्य समय है। जो बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि समय की वैल्यू दर्शन के लिए, लोग दो सेकंड के दो पल के दर्शन के लिए तरसते हैं, तो ये आपके समय की वैल्यू है और संकल्प की वैल्यू आपके वरदान है, एक एक संकल्प हमारा वरदान है। तो इतना महत्वपूर्ण हम जानते हुए भी अगर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, ऐसे ही कहीं कोई चार लोग बैठे हैं और हम वहां खड़े हो जाएं, उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, गपशप मारने में लग जाएं, तो उस अमूल्य समय को हम खो रहे हैं। अर्थात एक तो हम स्वयं के पुरुषार्थ से वंचित रह रहे हैं, दूसरा जो भक्तों के लिए बाबा ने कहा कि दो सेकंड के दर्शन के लिए वो प्यासे हो जाते हैं, तो हम भी उनको ही वंचित कर रहे हैं और उनका ही बोझ हमारे सिर पर आ रहा है। तो समय के प्रति हम सजग नहीं है, समय किस गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे पुरुषार्थ की रफ्तार क्या है, स्पीड क्या है और किस स्टेज पर हम रहते हैं, वो बाबा हमें रोज रोज मुरलियों में उससे हमको अवगत कराते रहते हैं। लेकिन पुराने संस्कार भी इतने प्रबल होते हैं अंदर में, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं ऐसे ही लिप्त हो जाते हैं। फिर कहते हैं ऐसा तो मेरा अर्थ नहीं था लेकिन ऐसे ही मुख से बोल निकल गया, ऐसे ही कह दिया, अब हम तो ऐसे ही कह के किसी को चले गए लेकिन दूसरे के बेचारे की नींद ही उड़ गई, उसको रात को नींद नहीं आई, उसको हम ऐसा वैसा बोल बोल दे, वो बेचारा आगे से पहले डिसाल्टेड हो और हम ऊपर से और थोड़ा सा जले पर नमक छिड़क दें तो क्या कहेंगे उसको। तो एक तो स्वयं के प्रति भी ऐसे ही वो बोल बोल दे जो हमारे पुरुषार्थ को आगे नहीं बढ़ने देते हैं और दूसरों को भी कहीं ना कहीं वंचित कर रहे हैं। ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही बैठे थे, ऐसे ही चल रहे थे, तो ये ऐसे ही की जो जंजाल है इसमें हम कहां कहां डूबे हुए हैं, कहां कहां हमारी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, कर्मेंद्रियों के अधीन है अभी तक भी। तो इस अधीनता के कारण ही ऐसे ही जीवन हमारा नीरस तो नहीं बनता जा रहा है। फिर हमें जो ब्राह्मण जीवन का सुख अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा, फिर हम रोज मुरली तो सुनते हैं लेकिन फिर भी क्या आता है, वही तो वही माँ वाक्य हैं, वही तो लोग देखने में है, सामने वाले में भी परिवर्तन तो दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी ऐसे ही चल रहे हैं, हम भी ऐसे ही चल रहे हैं, बड़े भी ऐसे ही हैं, तो फिर हम भी उसी चाल में शामिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही दिन प्रतिदिन हमारे जो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है वो ऐसे ही की दौड़ में कहीं विस्मृत तो नहीं हो रहा है, विस्मृति की निद्रा में कहीं ना कहीं हम अपने पुरुषार्थ की स्पीड को आगे नहीं कर पा रहे हैं। एक तो ज्ञान की विस्मृति है, समय कौन सा चल रहा उसकी विस्मृति है, बाबा की विस्मृति है, अपने लक्ष्य के प्रति सजग नहीं है, पुरुषार्थ के प्रति गंभीर नहीं है। तो जितना जितना हम पुरुषार्थ के प्रति गंभीर हो जाएंगे तो जो ऐसे ही का जंजाल है इससे हम मुक्त हो सकते हैं। अगर ऐसे ही के चक्कर में हम रहे तो इस जीवन का हम श्रेष्ठ अनुभव नहीं कर पाएंगे और ना ही दूसरों को करा पाएंगे। फिर ये लाइफ भी जैसे बोर लाइफ लगेगी, फिर सोचेंगे ऐसे ही फंस गए चलते चलते ब्रह्मा कुमारी में, ऐसे इससे तो अच्छा था पहले ठीक थे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो इसके सूक्ष्म जो ज्ञान के रहस्य हैं या पुरुषार्थ के जो सूक्ष्म कदम हैं वो पता चलते हैं। फिर पता चलता है हमने इस पथ पर जो कदम रखा है वो कितना कठिन है। ये सारा कुछ 7 दिन के कोर्स में तो कराया नहीं जाता। अगर 7 दिन के कोर्स में पता चल जाए तो कोई निकलेगा ज्ञान में। 7 दिन के कोर्स में तो हमको बहुत सुनहरे दृश्य दिखाए जाते हैं, अभी स्वर्ग आया कि आया भगवान आया हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हाँ अगर हम श्रीमत पर नियम प्रमाण मर्यादा पूर्वक ईश्वरीय आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं, उन पर ठीक से चल रहे हैं, तो जितने भी कड़ी परिस्थितियां जाए दिन प्रतिदिन तो उनसे हम मुक्त रह सकते हैं। तो ऐसे जैसे जो भी है वो हमारे किनारे वो छूटते जाएंगे, नहीं तो कर्मेंद्रियों का जंजाल बहुत बड़ा है। जो बाबा मुरली में सुना रहे हैं, जो साप्ताहिक जो त्याग का कोर्स चल रहा है, देह बांध का त्याग, देह के संबंधियों का, और देह के संबंधी कौन से हैं बाबा ने कौन सा बताया? देह के संबंधी ये कर्मेंद्रियां, और नेक्स्ट फिर लौकिक संबंधी जो है देह के लौकिक संबंध, तो फिर अलौकिक संबंध है। लौकिक सोच तो छूट जाते हैं, फिर अलौकिक संबंधों की एक नई नए रिश्ते चालू हो जाते हैं। फिर वो रिश्ते काफी घातक होते हैं। लौकिक से छूटना तो सहज है, लेकिन अलौकिक रिश्ते अगर हम कायम करते हैं तो वो भी हमारे इस ब्राह्मण जीवन को, जैसे ब्राह्मण जीवन पर जैसे ग्रहण लगा देते हैं, अंधकार आ जाता है। तो हमें स्वयं के ऊपर नजर रखने की जरूरत है कि कहीं हम अपने जो अंदर दोष हैं उनको नजरअंदाज करके दूसरों पर दोषारोपण तो नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ही उसने बोला था मैंने भी ऐसे बोल दिया, उसमें इन्वॉल्व बोल गए, ऐसे वो घूमने गया था मैं भी ऐसे चला गया तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया हमने, ऐसे वो गपशप मार रहे थे हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए तो हमारा भी टाइम चला गया। तो अगर हम लंबे समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम ऐसे ही ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो वो जो हमारा पुरुषार्थ है वो भी हमारा पुरुषार्थ दूसरों के प्रति इतना श्रेष्ठ नहीं रहता है। वो सोचते हैं पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन इसमें भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो उनके मन में फिर परिवर्तन करने की जो एक संकल्प आना चाहिए, परिवर्तन करने की जो एक योजना जो तैयार करनी चाहिए उनको, वो भी नहीं आती है फिर। क्योंकि अधिकतर जो हमारा बदलाव होता है तो दूसरे के चरित्र को देखकर बदलाव होता है। ज्ञान को तो हम समझ लेते हैं लेकिन कंप्लीट जो अंडरस्टैंडिंग है वो किसी के चरित्र को देख के होती है। इसलिए सुनाते हैं ना बीच में यहां के कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट फ्रीडम। जब तक हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे नहीं, अपने जीवन के महत्व को नहीं समझेंगे, अपने दायित्वों के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे, पुरुषार्थ के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तो फिर ऐसे ही के चक्कर में हमारा भी अकल्याण हो जाएगा। कल्याण के पथ पर जो हमने, कल्याण के मार्ग पर जो हमने कदम रखे हैं, जिस मार्ग पर हमको बाबा ने खड़ा किया है और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको सहज रास्ता भी बताया है, ज्ञान नियोग के बहुत सारे बिंदु बताए हैं, अगर हमको नजरअंदाज कर दे तो फिर स्वयं भी जैसे अकल्याण का अंदर में अनुभव होगा। कल्याणकारी युग है, फिर छोटी छोटी परिस्थितियां आएंगी तो उसमें भी कल्याण ही दिखाई देगा, चाहे कोई तन की है, धन की है, मन की है, जन की है। उन परिस्थितियों के वश भी होकर फिर हम मरे मुख से भी निकल के बाबा तो ऐसे ही कहता रहता है, इतने सालों से कह रहे हैं विनाश के बारे में, ऐसे ही कह रहे हैं, होता तो है नहीं है। तो फिर बाबा के महावाक्य भी ऐसे ही लगते हैं, इसलिए दिन प्रतिदिन के प्रति भी हमारी रुचि कम होती जाती है। तो हमें स्वयं के ऊपर ही नजर रखनी है, स्वयं की जो अंदर गलतियां हैं हो रही हैं, कहां कहां गलती हो रही है, जहां हम नुकसान कर रहे हैं अपना, अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो स्वयं के ऊपर नजर रखनी है। तो दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ जो हमारा है सूक्ष्म अति सूक्ष्म होना चाहिए, प्रगति अनुभव होनी चाहिए। परिस्थितियां तो बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बढ़ेंगी बढ़ेंगी, कम होने वाली नहीं है, लेकिन उनमें भी हमको मजबूत रहना है तो इस ज्ञान मार्ग में, इस बाबा के जो बताए हुए इस मार्ग में जो हमारे जीवन में जीवन को श्रेष्ठ बना रहा है, वर्तमान को ही सुक्त बना रहा है, इसके प्रति हमको सजग रहना पड़ेगा। और इसके लिए हमको बहुत संग की संभाल भी करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हम हमारा संग श्रेष्ठ नहीं है तब तक हम परचिंतन, परनिंदा, परपंच उसमें फंसे रहेंगे, उसमें से निकल नहीं पाएंगे। इसलिए दीदी जी भी कहते थे ना कि यहां सबसे बड़े ब्राह्मण जीवन में आते, चाहे यहां है चाहे लौकिक मन प्रवृत्ति में रहते हैं या सेंटर में रहते हैं, तो संग की संभाल बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जिसने लंबे समय तक ज्ञान मार्ग में चला है और अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया है, अपने संस्कारों पर कड़ी नजर नहीं रखी है, तो उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है। और हम भी अपनी आंखों पर अगर दोष दृष्टि का चश्मा पहने रहे तो दूसरों के भी वही पुराने संस्कार दिखाई देंगे, और उन संस्कारों के कारण हमारे मुख से भी ऐसे ही बोल निकलेंगे कि इतने सालों से तो ज्ञान में चल रहे हैं लेकिन यही परिवर्तन नहीं हुए, इनके बोल भी अभी ऐसे निकलते हैं। तो ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और जो अगर लंबे समय ज्ञान में चलने के बाद भी अगर ऐसे वैसे बोल निकलते हैं और हमें वो दिखाई दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही होगा, उनका अपना पुरुषार्थ लंबे समय से जमा भी है। बाबा ने पीछे 3-4 साल पहले मुरली में कहा था, नयों के प्रति इशारा किया था कि पुरानों को देखते नहीं रहना, पुराने तो एक सेकंड में जम मारेंगे और चले जाएंगे, क्योंकि उनका बहुत लंबे समय का उनका खाता जमा है। ये नहीं सोचने तो ऐसे कर रहे हैं तो वैसे कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों से वो गुजरे आज वो परिस्थितियां नहीं है, जो त्याग उसमें उन्होंने किया हुआ है, जो साधना की है, जो प्यार उसमें उन्होंने दिया है, जिस यज्ञ की स्थापना के कार्य के निमित्त जो परिस्थितियां उन्होंने झेली हैं, जितना उन्होंने सहन किया है, आज वो कुछ नहीं है, उनके आज कुछ भी नहीं है। कितना त्याग किया हुआ है, पानी से रोटी खाई है, अपना भोजन छोड़कर दूसरों को दिया हुआ है। अगर उन्हीं आत्माओं के संस्कार अगर हमको देख दिखाई देते हैं कुछ भी, वो पहले जैसे नहीं है, वो त्याग वाले नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, वो उनके संस्कार हमें पाठ पढ़ा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। उन परिस्थितियों से भी, उन संस्कारों से भी हमको सीखना है। तो हर आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है। तो जिस तरीके से हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा किसी की नकारात्मक अर्थात बुराई में भी अच्छाई को ढूंढो। तो इस ब्राह्मण लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो संग से संभाल भी बहुत जरूरी है। सूक्ष्म संग कैसा है? स्थूल संग तो ठीक है, लेकिन सूक्ष्म में हमारे मन का संग कहां है? जब हम परम क्षेत्र जाते हैं तो मन हमारा कहां कहां जा रहा है, कहां अटैचमेंट है? नहीं तो बैठे तो यहां, लेकिन अभी भी हमारा मन कहां कहां कहीं कहीं तो जा तो नहीं रहा है। तो मन के ऊपर पहरा देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक हम हमारे मन से श्रेष्ठ संकल्पों का प्रवाह नहीं होगा तो तब तक हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पुराने तो पहले से रिकॉर्डिंग है, जन्म जन्म के अनेक जन्मों के 63 जन्मों के संस्कार पहले से रिकॉर्डिंग है, तो वो ही प्ले होते रहेंगे बार बार। तो पुरानी चीज को मथेंगे तो क्या होगा, मच्छी मक्खरी आएगा ना, मक्खी और मच्छर, मच्छी नहीं मक्खी, मक्खी और मच्छर ही आएगा, तो क्या करेंगे, स्वयं को तंग करेंगे ना। तो कौन कौन से संकल्पों की हमने मन में रिकॉर्डिंग करके रखी है जो बार बार प्ले होती है, जो बार बार हमको ऐसे ही जंजाल के प्रति आकर्षित कर लेती है, ऐसे गपशप मारने जा रहे हैं, ऐसे मोबाइल देख के देख रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका को हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसे ही साधनों के जंजाल में फंसे हुए हैं। तो हमें मन के ऊपर भी पहरा देना है कि मन का संग कहाँ है, मन हमारा उसके साथ लगा हुआ है, मन मनोभाव की स्थिति रहती है। ऐसा तो नहीं है कि तन यहाँ है और मन भी कहीं और, ये जहां होना चाहिए वहां नहीं है। तो मन का संग भी हमारा श्रेष्ठ चाहिए, तो संग से भी संभाल बहुत जरूरी है। हमारे बोल कैसे हैं, हमारा कर्म कैसा है तो ये लंबे समय की साधना। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा था ना, परसों, कि तुम युद्ध के मैदान में हो। दुनिया में तो युद्ध होते हैं जो 6-10-15 साल चलते हैं, लेकिन ये वाला युद्ध तो अंत तक है, इसमें घबराना नहीं है, डटे रहना है। तो खैर हमारी तो युद्ध में स्थिति होनी भी नहीं चाहिए, अगर आएंगी भी परिस्थितियां तो बाबा ने कहा परिस्थितियां आती हैं हमारी लगन को बढ़ाने के लिए। तो जब तक जीना है तब तक ही ज्ञान अमृत पीते रहना है, परिस्थितियों के हमें वश नहीं होना है। जीवन में साइड सीन तो आएंगे, उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन हमें वहां रुक नहीं जाना है, बस आगे बढ़ते जाना है। उन परिस्थितियों से कुछ सीखकर, कुछ पाठ पढ़कर, कुछ आगे बढ़ने के लिए नए कोई संकल्प उनसे प्राप्त करके हमें निरंतर अपने जीवन पर जीवन में आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसे ही का जो चक्कर है, जो बाबा कहते हैं चालू भाषा, तो हमारी वो भाषा नहीं होनी चाहिए, सांसारिक भाषा जो पहले थी उससे हमारा परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। नहीं तो कई बार कहते हैं बीके लाइफ तो पहले अच्छे थे आप, अभी कुछ ज्यादा ही खूंखार हो गए हैं, जो नहीं होना चाहिए वो बोल देते हैं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हमको पता है, अब सामने वाले को पता नहीं होता है। सामने वाले कई बार होता है, यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं तो वो जोर से बोलते हैं, उनकी आदत है वैसे बोलने की, तो उनको भी कहा जाता है शांति से बोलो, तो एक बोलता है शांति से बोलो और दूसरा अगर वो आता है, अगर वो क्रोध जोर से बोले तो आके कहते आपको अकल नहीं है, अगर स्वेयर ड्रेस में हमको उनको कहोगे आपको अकल नहीं है, यहाँ लिखा है शांति से धीरे से बोलो, और वो जोर से बोलता है, तो सामने वाला हमको ही पाठ पढ़ा लेता है कि पहले आप धीरे बोलना सीखो, वो हमको ही पाठ पढ़ा के चला जाता है। उनको हम समझाते हैं कि क्रोध नहीं करो, और बाहर आके क्रोध करता है कि आप यहाँ क्रोध डाल दो, और सामने को क्रोध करता है आप जोर से क्यों बोल रहे हो, तो एक चटके लेके आता है, भाई साहब पहले आप ही ले दो, हम आज से क्रोध छोड़ रहे हैं। तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, हमें पाठ पढ़ा के ना चले जाए। दुनिया को पाठ पढ़ाने के लिए पहले हमें स्वयं को स्वयं ही पाठ पढ़ाने की जरूरत है। कौन कौन के संस्कार, कौन कौन से संस्कार हैं, कौन कौन से संकल्प हैं, कौन से बोल हैं, कौन से कर्म हैं जिनके कारण हमारा ब्राह्मण जीवन प्रभावित हो रहा है, आगे प्रगति से रुका हुआ है, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन रहा है। तो हमें ये चालू भाषा, संकल्प, बोल, कर्म, इससे भी हमको मुक्त होना है, और बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है, क्योंकि पुराने संस्कार इतने जल्दी परिवर्तन होते नहीं है। हम अपनी लाइफ में देखते हैं कई सारी आदतों पर नियंत्रण है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी आते हैं जिनसे मुक्त नहीं है, जो नहीं होनी चाहिए हमारे में। वो सामने वाले को तो अच्छी लगती हैं, लेकिन वो नुकसानदायक होती हैं, तो उन पर भी हमको पैर रख के मुक्त होने के लिए, क्योंकि हर एक को अपने अपने संस्कारों का खुद ही मालूम है, उससे मुक्त होने के लिए सोल्यूशन तो मिलेगा दूसरे से, लेकिन पुरुषार्थ तो स्वयं को करना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न तो बहुत आते हैं, लेकिन प्रश्नों से मुक्त होने के लिए ज्यादा तो हम स्वयं को ही पता होता है कि इस कमजोरी ये कमजोरी हमारे में आई कहां से। और कोई भी मैं समझता हूं ऐसा कोई भी एक प्रश्न का उत्तर ऐसा भी नहीं रहा हुआ जिसका उत्तर बाबा ने नहीं दिया हुआ है। आज तक तो मैंने किसी से प्रश्न पूछा ही नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर मुरली में है ही है ऑलरेडी। हाँ, उसका विस्तार से मनन चिंतन करने के लिए डिस्कशन करना, हाँ, अपने मन का जो है चिंतन को चलाना, कहीं चिंतन का अकाल ना पड़ जाए, इसलिए चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ में संगठित रूप से इन्वॉल्व होना जरूरी है। हमारी बुद्धि को थोड़ा धक्का लगे कहीं ना कहीं से, नहीं तो हम अपनी मर्यादाओं को भी ताक में रखकर अपने पुराने संस्कारों के जो अपने नहीं है पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर इस ब्राह्मण जीवन के आनंद से फिर वंचित रह जाते हैं। तो स्वयं के ऊपर भी हमें पूरा अटेंशन रखने की जरूरत है, स्वयं ही स्वयं को मुक्त करना है। मुक्त करने की बाबा ने विधियां बता दी हैं, सारे ज्ञान का सार बताया था ना उस दिन के, अपने लिए एक ही लाइन काफी है और वो है जो हम अधिकतर प्रैक्टिस करते हैं, जो सारा सारी है, देह से देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्मनिश्चय कर मुझे परमात्मा को याद करो तो सर्व पाप से मुक्त हो जाओगे, सारा इसी में है। तो इस एक ही लाइन में सारे ज्ञान का सार है। कई बार देखते हैं अगर हमारा चिंतन नहीं चले तो ये लाइन तो पक्की याद हो ही जाती है और इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। और इस लाइन को जैसे जैसे स्मृति में आती है तो जैसे मुक्ति की अवस्था का अनुभव होने लगता है, बहुत सारी बातों से मुक्त हो जाते हैं। तो जितना भी हम थोड़ा बहुत चिंतन करें उस चिंतन को हमें प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, तो स्वयं का परिवर्तन करना है ताकि बाबा का जो इस संसार का परिवर्तन करने का जो एक महान कार्य है उसमें हम पूरी तरह से मददगार बन सके। कराने वाला तो बाबा ही है, वो करा ही रहा है, लेकिन हमें इस जीवन को पूरा सफल करना है। ऐसे ही के चक्कर में ना ये जीवन कहीं जिस श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं उससे कहीं हम भटक ना जाएं। तो हमें स्वयं ही स्वयं के ऊपर अटेंशन रखकर दिन प्रतिदिन स्वयं की प्रगति करनी है, दूसरे की कमी कमजोरियों को नहीं देखना है, स्वयं की कमी कमजोरियों को देखकर उनको नष्ट करने का, उनको उनका संस्कार करने का पुरुषार्थ हमें करते ही रहना है। ओम शांति।